भाग एक खंड दो प्रवचनों में प्रयुक्त पाली पारिभाषिक शब्द उपदेशों को समझने के लिए पाठक को बौद्ध धर्म की कुछ मूलभूत शिक्षा से परिचित होना चाहिए, परंतु न तो यहाँ दिए गए स्पष्टीकरण और न ही स्पष्टीकरण के लिए चयनित विषय बुद्ध के शिक्षण का पूरा विवरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं, अपितु वे पाठक को इस पुस्तक में संकलित प्रवचनों को समझने के योग्य बनाने के लिए हैं। त्रिपिटक स्थविरवाद पाली में थेरवाद बौद्ध धर्म ग्रंथों को तीन पिटकों अर्थात टोकरियों में विभाजित किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें पाली भाषा में जिसमें इनकी मूल रूप में रचना हुई थी त्रिपिटक अर्थात त्रिपिटक कहा जाता है। ये तीन पिटक इस प्रकार हैं, एक विनय पिटक अर्थात भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी पुस्तकें, दो सुत्तांत पिटक अर्थात भगवान बुद्ध एवं उनके प्रमुख शिष्यों के प्रवचनों की पुस्तकें, तीन अभिधम्म पिटक अर्थात परम सत्य शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं या तथ्यों के उनके चरम घटकों में विश्लेषण से संबंधित पुस्तकें। इन ग्रंथों का अध्ययन थेरवाद बौद्ध धर्म के परियत्ति अर्थात विद्वत्तापूर्ण प्रशिक्षण में सम्मिलित है। प्रतिपदा पाली में पटिपत्ति अर्थात व्यावहारिक प्रशिक्षण में जो इन प्रवचनों का मुख्य विषय है, शील अर्थात नैतिकता, समाधि अर्थात चित्त एकाग्रता एवं प्रज्ञा, पाली में पय्या अर्थात अंतर्दृष्टि का अभ्यास आता है जो निर्वाण के चार सोपानों के पटिवेद अर्थात उपलब्धि की ओर अग्रणी होता है। धम्म शब्द के अलग अलग कई अर्थ हो सकते हैं, किंतु इन प्रवचनों के संदर्भ में यह सदैव बुद्ध की शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सील अर्थात शील भिक्षुओं के लिए नैतिकता में प्रशिक्षण के अंतर्गत 227 नियमों का पालन सन्निहित है। इन नियमों के संग्रह का नाम प्रातिमोक्ष पाली में पातिमोक्ष है तथा यह विनय पिटक का भाग है। गृहस्थ जनों को प्रशिक्षण के 5 या 8 नियमों का पालन करना होता है। 5 नियमों को पंचशील तथा 8 नियमों को अठशील अर्थात उपवासतशील पाली में उपोसतशील कहा जाता है। पंचशील इस प्रकार हैं, एक किसी भी प्राणी की हत्या करने से विरति अर्थात विरक्ति या परहेज, दो जो वस्तु न दी गई हो उसे लेने से विरति, तीन यौन दुराचार से विरति, 4 असत्य वाणी से विरति, 5 मादक पेय एवं पदार्थों के सेवन से विरति। उपोसतशील के अंतर्गत 8 शिक्षापद हैं, 1 से 5 जैसा कि अभी बताया गया है। 6 विकाल भोजन अर्थात दोपहर के बाद ठोस आहार के सेवन से विरति। 7. नृत्य, गायन, संगीत एवं अश्लील प्रदर्शनों से, माला, इत्र और अंजन से तथा शरीर को सुशोभित करने एवं सजाने वाली वस्तुओं से विरति। 8. उच्च और विलासितापूर्ण शयनासनों से विरति। वास्तव में सील का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ये शिक्षा पद तो उचित आचरण या सदाचार के न्यूनतम मूल आधार है, जिनके पालन की अपेक्षा किसी भी बौद्ध गृहस्थ द्वारा की जाती है। सील का प्रयोजन शारीरिक एवं मौखिक गतिविधियों को नियंत्रण में लाना है। समाधि अर्थात शांतिपूर्ण चित्त एकाग्रता एवं मन पर नियंत्रण। बुद्ध ने समाधि की प्राप्ति के लिए 40 विधियां सिखाई, जिनमें से आनापान एक है। बुद्ध ने सिखाया कि समाधि के लिए सील पूर्वापेक्षित है। पय्या, बुद्ध के अनुसार सभी संस्कारों, पाली में संखारों अर्थात अनुबद्धित दशाओं या प्रक्रियाओं के स्वभाव में उनके लक्षण निहित होते हैं। प्रज्ञा, पाली में पय्या, इन लक्षणों जैसे अनित्य, पाली में अनिच्च अर्थात नश्वरता, दुख या असंतोष तथा अनात्म, पाली में अनत्ता अर्थात किसी व्यक्तिगत इकाई जैसे आत्मा, स्वयं या अहं के अभाव का व्यक्तिगत अनुभव द्वारा बोध है, जो विपश्यना, पाली में विपस्सना, ध्यान के माध्यम से अर्जित होता है। विपस्सना साधना में चित्त को संपूर्ण रूप से संतुलित अवस्था में स्थापित किया जाता है और फिर उसे सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं के परिवर्तनशील स्वरूप अर्थात अनिच्च या असंतोषजनक प्रवृत्ति अर्थात दुख अथवा अवैयक्तिक प्रकृति अर्थात अनत्ता की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। सील, समाधि एवं पय्या, ये तीन शिक्षाएं या तीन प्रशिक्षण कहलाते हैं। इन तीन भागों में विभाजन के अतिरिक्त हम प्रायः इनके दो भागों में विभाजन भी पाते हैं। एक आचरण अर्थात सदाचार या सील तथा दो भावना अर्थात मानसिक विकास यानि समाधि एवं पय्या। गणना की एक अन्य विधि 1 दान, 2 सील एवं 3 भावना है। नहीं तो दान या उदारता को सील के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सामान्य रूप से जो प्राणी कहलाते हैं जैसे ब्रह्मा, देवता, मनुष्य, पशु आदि, वे बौद्ध धर्म में मानसिक एवं शारीरिक घटनाओं या प्रक्रियाओं के संयोजन तथा सतत प्रादुर्भाव एवं विघटन मात्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं के रूप में देखे जाते हैं। मन के लिए पाली में नाम शब्द भी है तथा पदार्थ के लिए रूप शब्द। नाम और रूप अर्थात मन एवं पदार्थ दोनों नश्वर या अस्थिर होते हैं, किंतु अनित्य, पाली में अनिच्च के सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय बुद्ध ने उन प्रक्रियाओं से प्रारंभ किया जिनसे पदार्थ बनता है तथा जिस प्रकार बुद्ध पदार्थ को जानते थे वह आज के विज्ञान द्वारा अनुसंधानित परमाणु की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञात कराया कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, वह कलापों से रचित होता है। ये कलाप परमाणुओं से भी अधिक सूक्ष्म होते हैं तथा प्रत्येक कलाप उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। प्रत्येक कलाप प्रकृति के 8 तत्वों से गठित एक राशि है, अर्थात दृढ़ता या ठोसपन, तरलता, गर्मी, गति, रंग, गंध, स्वाद और आहार। प्रथम 4 जो भौतिक गुण कहलाते हैं किसी भी कलाप में प्रधान होते हैं। अन्य 4 सहायक मात्र हैं जो उन पर निर्भर करते हैं तथा उनसे उत्पन्न होते हैं। भौतिक क्षेत्र में कलाप एक सूक्ष्मतम कण है जो आज भी विज्ञान की सीमा से परे है। सयाजी उबाखी के शब्दों में, प्रकृति के ये 8 तत्व जिनकी विशेषता व्यवहार मात्र होती है, जब एक साथ होते हैं तो केवल तभी किसी कलाप के अस्तित्व का सृजन होता है। दूसरे शब्दों में, व्यवहार के इन 8 प्राकृतिक तत्वों का क्षण भर के लिए सह अस्तित्व बौद्ध धर्म में एक कलाप के रूप में जाना जाता है। एक प्राणी को भी पंच स्कंध, पाली में पंच खंध, अर्थात 5 समुच्चयों के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है। इस संदर्भ में रूप या पदार्थ 1 स्कंध है, जबकि नाम या मन को 4 स्कंधों में विभाजित किया गया है। 1 विज्ञान, पाली में विज्ञान, अर्थात चेतना। 2 संज्ञा, पाली में संज्ञा, अर्थात अभिज्ञता या पहचानना। 3 वेदना, अर्थात संवेदना या अनुभूति। 4 संस्कार, पाली में संखार, अर्थात कर्म की शक्ति। इससे यह देखा जा सकता है कि पाली के नाम शब्द का अर्थ अंग्रेजी के माइंड या मस्तिष्क शब्द के अर्थ की तुलना में अधिक व्यापक है। संखार या प्रचलित शब्दावली में कर्म, पाली में कम्म, अतीत में किए गए कार्यों की शक्ति के अवशेष हैं। यहाँ अतीत का अर्थ संसार से, अर्थात भवचक्र से, यानी जन्म एवं मृत्यु के चक्र में व्यतीत अरबों अरबों जीवन से है। इंद्रियों के माध्यम से अनुभूतियों का कारण संखार होता है। किसी संवेदी संपर्क या अनुभूति के प्रति प्रतिक्रिया के 3 संभावित तरीके हैं, कुशल या नैतिक प्रतिक्रिया, अकुशल या अनैतिक प्रतिक्रिया तथा अव्यक्त, पाली में अव्यक्त अर्थात तटस्थ प्रतिक्रिया। वास्तव में तटस्थ प्रतिक्रिया केवल 1 अरहत के लिए ही संभव है। अरहत अर्थात वह व्यक्ति जिसमें न तो कोई लोभ हो, न कोई द्वेष या दुर्भावना हो, और जिसके मन में बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों के विषय में न कोई भ्रम हो। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अकुशल के स्थान पर कुशल प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है। कुशल प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति में न केवल शारीरिक एवं मौखिक कार्यों पर अपितु मन पर भी नियंत्रण होना आवश्यक है। प्रत्येक शारीरिक एवं वाचिक कार्य मन में ही प्रारंभ होता है तथा जो कार्य संखार अथवा कम्म में फलित होता है वह शारीरिक तथा वाचिक कार्य से संबद्ध इच्छा शक्ति है। प्रारंभ में मन को केंद्रित एवं शांत करने के लिए आनापान साधना एक उपकरण मात्र होती है। इस स्तर पर संवेदनाओं, विचारों, भावनाओं तथा ऐसी मानसिक घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऊपरी होंठ के ऊपर, नाक के नीचे, वायु के त्वचा पर भौतिक स्पर्श की सरल जागरूकता के साथ मन का ध्यान बने रहने के लिए अभिप्रेत होता है। इस स्थिति में तीनों अकुशल मूल अर्थात लोभ, द्वेष तथा मोह या भ्रम स्थगित हो जाते हैं तथा तीन कुशल मूल यानि अलोभ अर्थात लालच से मुक्ति, अदोष अर्थात क्रोध से मुक्ति तथा अमोह अर्थात ज्ञान या समझ शेष रहते हैं। भौतिक प्रक्रिया पर चित्त की क्षणिक एकाग्रता से एक अस्थायी मानसिक शुद्धता फलित होती है जिसे बौद्ध धर्म में समाधि या ध्यान, पाली में ध्यान कहते हैं। बौद्ध मत के अनुसार मन की स्थायी शुद्धता प्राप्त करने के लिए पदार्थ एवं मानसिक स्कंधों अर्थात समुच्चयों को उनके निरंतर परिवर्तन अर्थात अनिच्छ, उनके असंतोषप्रद स्वभाव अर्थात दुख तथा उनमें किसी अहम, किसी स्थायी व्यक्तित्व या आत्मा के अभाव अर्थात अनत्ता के रूप में देखा जाना आवश्यक है। इन विशेषताओं के वास्तविक रूप में इनमें से किसी भी एक विशेषता के अनुभव द्वारा व्यक्ति को सभी आसक्तियों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है तथा वह इस प्रकार दुख के अंत तक पहुंच सकता है। चार आर्य सत्य। प्रवचनों में जिन चार आर्य सत्यों का प्रायः उल्लेख हुआ है वे इस प्रकार हैं। एक, दुख सत्य। दो, दुख की उत्पत्ति अर्थात समुदय सत्य। तीन, दुख के अंत अर्थात निरोध सत्य। चार, दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य, पाली में मग्ग सत्य। दुख शब्द परंपरागत रूप से पीड़ा या कष्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु इस संदर्भ में उसके पर्याय के रूप में हमने असंतोष शब्द का भी प्रयोग किया है। दुख के आर्य सत्य के अनुसार सभी संस्कार या अनुबद्धित दशाएं असंतोषप्रद या दुखमय हैं। दुख की उत्पत्ति का आर्य सत्य घोषित करता है कि तृष्णा या लोभ दुख की उत्पत्ति का कारण होता है। दुख के निरोध का आर्य सत्य सिखाता है कि जैसे ही सभी तृष्णा समाप्त होती है वैसे ही दुख भी समाप्त हो जाता है। दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का आर्य सत्य हमें अष्टांगिक आर्य मार्ग देता है जिसके आठ भाग हैं तथा वे तीन समूहों अर्थात सील, समाधि एवं पय्या में व्यवस्थित हैं। सील के अंतर्गत सम्मा वाचा अर्थात समुचित वाणी, सम्मा कम्मन्ता अर्थात समुचित कार्य तथा सम्मा आजीवा अर्थात समुचित आजीविका आते हैं। समाधि के अंतर्गत सम्मा वायामो अर्थात समुचित व्यायाम या प्रयास, सम्मा सती अर्थात समुचित सती यानि स्मृति जागरूकता, मनस्कार या ध्यान तथा सम्मा समाधि अर्थात समुचित एकाग्रता या समाधि आते हैं। पय्या के अंतर्गत सम्मा दिट्ठि अर्थात समुचित दृष्टि तथा सम्मा संकप्पो अर्थात समुचित संकल्प या विचार सम्मिलित है। अस्तित्व के 31 लोक। बुद्ध ने बताया कि यह ब्रह्मांड असंख्य विश्व मंडलों से रचित है तथा प्रत्येक विश्व मंडल या विश्व प्रणाली में 31 लोक होते हैं। ये इस प्रकार हैं। 1. 4 अरूप ब्रह्मलोक। इन लोकों में कोई भौतिक पदार्थ नहीं अपितु मन मात्र होता है तथा इनमें उच्चतम ध्यानों अर्थात समाधियों के माध्यम से जाया जा सकता है। 2. 16 सूक्ष्म भौतिक पदार्थ वाले रूप ब्रह्मलोक जो रूपावचर समाधियों के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। 3. 6 देवलोक जो शील एवं उदारता के अभ्यास के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। 4. मनुष्यलोक, वे भी शील एवं उदारता के अभ्यास के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। 5. 4 अपाय लोक अर्थात असुर, भूत प्रेत, जंतु एवं नरक लोग जो बुरे कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। अस्तित्व के इन 31 लोकों को 3 भागों में भी विभाजित किया जा सकता है। 4 उच्चतम अरूप ब्रह्मलोक, शेष 16 रूप ब्रह्मलोक तथा कामावचर लोक जो कामेच्छाओं के क्षेत्र हैं और जिसमें 4 निम्नलोक, मनुष्यलोक एवं 6 देवलोक सम्मिलित हैं। विभिन्न लोकों में प्राणियों का पुनर्जन्म उनकी च्युति अर्थात मृत्यु के क्षण के कर्म पाली में कम के अनुसार होता है। कोई अच्छा शुद्ध मानसिक कार्य मनुष्य या देवलोक में जन्म देता है। समाधि का अभ्यास ब्रह्मलोकों में पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। मृत्यु के क्षण में मन यदि अशुद्ध है अर्थात क्रोध, लोभ, मोह की मनस्थितियों से अभिभूत है तो इस अशुद्ध मन से उत्पन्न शक्ति के परिणाम स्वरूप अस्तित्व के 4 अधोलोकों अर्थात अपाय लोकों में से किसी एक में पुनर्जन्म होगा। बौद्ध धर्म में मानसिक प्रशिक्षण सर्वोपरि महत्व का समझा जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है तो वह अप्रिय मानसिक परिस्थितियों में भी अपना ध्यान केंद्रित एवं शांत बनाए रख सकता है तथा इस प्रकार आत्मविश्वास के साथ मृत्यु का सामना कर सकता है। निब्बान के 4 सोपान। निर्वाण पाली में निब्बान अर्थात सभी दुखों के अंत की अवस्था प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 10 संयोजनों अर्थात बंधनों या बेड़ियों से जो उसे इस संस्कारित या अनुबद्धित अस्तित्व से बांधे रखती हैं स्वयं को मुक्त करना होगा। मुक्ति की यह प्रक्रिया 4 सोपानों की श्रृंखला है। ये 10 संयोजन इस प्रकार हैं। 1. किसी स्थायी अहंग, स्वयं या आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। 2. अष्टांगिक आर्य मार्ग एवं 4 आर्य सत्यों के विषय में संदेह। 3. रीतियों एवं अनुष्ठानों से लगाव। 4 कामेच्छा, 5 क्रोध एवं घृणा, 6 सूक्ष्म भौतिक अस्तित्व की लालसा, 7 अरूप अर्थात भौतिकता विहीन अस्तित्व की लालसा, 8 अभिमान, 9 उत्तेजना या व्याकुलता, तथा 10 4 आर्य सत्यों की अधूरी समझ। 4 सोपान इस प्रकार हैं। 1 श्रोतापत्ति, पाली में श्रोतापत्ति अर्थात धारा में प्रवेश। व्यक्ति को 10 में से पहले 3 संयोजनों से, जो प्राणियों को जन्म और मृत्यु चक्र में बांधे रखते हैं, मुक्ति मिल जाती है। ये संयोजन हैं, 1 किसी स्थायी अहम, स्वयं या आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, 2 अष्टांगिक आर्य मार्ग एवं 4 आर्य सत्यों के विषय में संदेह, 3 रीति रिवाजों एवं अनुष्ठानों से लगाव। दूसरा सोपान सकृदागामी, पाली में सकदागामी अर्थात एक बार आने वाला। ऐसा व्यक्ति 4थे एवं 5वें संयोजनों को अर्थात कामुक इच्छा तथा क्रोध को दुर्बल कर देता है। 3 अनागामी अर्थात कभी न लौटने वाला। ऐसा व्यक्ति 4थे एवं 5वें संयोजनों से अर्थात कामुक इच्छा तथा क्रोध से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। 4था सोपान अरहत, ऐसा व्यक्ति जो शेष संयोजनों अर्थात 6 सूक्ष्म भौतिक रूप अस्तित्व की लालसा से, 7 भौतिकता विहीन अरूप अस्तित्व की लालसा से, 8 अभिमान से, 9 उत्तेजना या व्याकुलता से, तथा 10 4 आर्य सत्यों की अधूरी समझ से सदैव के लिए मुक्ति पा लेता है। इन 4 में से प्रत्येक सोपान 1 मार्गपद पाली में मग्गपद एवं 1 फलपद के माध्यम से उपलब्ध होता है। ये तकनीकी शब्द हैं, किंतु बर्मा में प्रायः इन्हें निब्बान के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति इनमें से किसी भी सोपान को प्राप्त कर चुके हैं, वे आर्य पाली में अरिय अर्थात कुलीन कहलाते हैं। ये पद केवल विपश्यना पाली में विपश्यना अर्थात अंतर्दृष्टि साधना के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। 10 पारमी या पारमिताएं, 10 गुणवत्ताओं का एक समूह 10 पारमी कहलाता है, जिनमें व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए स्वयं को परिपूर्ण करना होता है। ये 10 पारमी इस प्रकार हैं। 1 उदारता या दान, 2 नैतिकता या सील, 3 त्याग या नैष्क्रम्य पाली में नेखम, 4 विवेक या समझ या प्रज्ञा पाली में पय्या, 5 प्रयास या वीर्य पाली में वीर्य, 6 धैर्य या शांति पाली में खांति, 7 सत्य पाली में सच, 8 दृढ़ निश्चय या अधिष्ठान पाली में अधिष्ठान, 9 प्रेममय करुणा या मैत्री पाली में मेत्ता, तथा 10 समभाव या उपेक्षा पाली में उपेक्षा। इस भूमिका की सहायता से प्रवचनों को समझना कठिन नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि केवल उन्हीं पाली शब्दों का उपयोग हो जो प्रायः प्रयोग में आते हों, तथा जिनसे यह प्रतीत होता हो कि पाठक के लिए उन्हें अपनी शब्दावली में समाहित कर लेना ही बुद्धिमत्ता होगी। मेरा तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जैसे सील, अनिच, पहिया इत्यादि। पुस्तक के अंत में पाठक की स्मृति को ताजा करने के लिए पाली शब्दों की एक अनुक्रमणिका भी दी गई है। म्यांमार में प्रायः प्रयुक्त पाली शब्द जो साधारणतया बर्मी मातृभाषा में अनुदित नहीं किए जाते, उन्हें जिज्ञासु पाठकों के लिए लिखित पुस्तक में फुटनोट्स अर्थात पाद टिप्पणियों में व्याख्या समेत प्रस्तुत किया गया है। किंतु इस ध्वनि संग्रह में पाद टिप्पणियों को उन पाली शब्दों के निकट स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया है, तथा यहाँ हम बता दें ऐसा कहकर उनका प्रारंभ हुआ है एवं स्वर परिवर्तन द्वारा टिप्पणी का समापन इंगित किया गया है। उसके बाद यदि किसी का संवाद है तो वह किसका संवाद है वह भी इंगित किया गया है। हम यहाँ यह जोड़ना चाहेंगे कि इन प्रवचनों को पढ़ने से पहले पाठक को बौद्ध धर्म के दार्शनिक आधार को समझने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे उपदेशक तथा उनके शब्दों के प्रति जिनकी विशिष्टता गहरी सादगी तथा ईमानदारी है अपना मस्तिष्क खुला रखने का प्रयास करना चाहिए। इस भूमिका में अनेक स्पष्टीकरण सयाजी उबाखी मेमोरियल ट्रस्ट यूके द्वारा 1991 में प्रकाशित धम्म टेक्स सीरीज 1, धम्म टेक्स बाई सयाजी उबाखी अर्थात सयाजी उबाखी के धम्म निबंध नामक पुस्तिका से लिए गए हैं। रॉजर बिशॉफ।